ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ವಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ವಿರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾ ಧಿಯಾ ಉಲುಖಲಾತ್ ಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ಧೃತ್ಯ ಗೋಪ್ಯ ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಲಸತ್ ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ವಿರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾದಿಯೋನು ಖಲಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಮಾತ್ಯಂತತೋ ದ್ರೋತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ इसकी रचना की है। पद्म पुराण में एक संवाद है, नारद जी वक्ता हैं और शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, तो नारद जी ने यह इतिहास कहा है कार्तिक महात्म्य में। पद्म पुराण में एक खंड है कार्तिक महात्म्य, तो उसमें सत्यव्रत मुनि किस प्रकार भगवान के दामोदर स्वरूप की उपासना करते हैं और क्या स्तोत्र पढ़ते हैं, इसको दिया गया है। ये स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है और सारे विश्व में कार्तिक के महीने में यह स्तोत्र गाया जाता है। विशेष करके इस स्तोत्र में भगवान जो उखल में बांधे गए हैं, इसी दृश्य का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम किया जा रहा है। नमामि ईश्वरम, कथम भूतम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जिनका रूप जिनका श्री विग्रह सच्चित आनंदमय है, कोई सामान्य बालक नहीं है। पुनः कथम भूतम ईश्वरम, नसत कुंडलम, जो कुंडल के कारण बहुत सुंदर लग रहे हैं अथवा जिनके कानों में कुंडल बहुत अच्छा लग रहा है, लसत कुंडलम। कहाँ है आपके ईश्वर? गोकुले, गोकुल में, गोकुले ब्राजमानम। ब्राजमानम का अर्थ बहुत सुंदर लगते हैं, भले मिट्टी लगी हो शरीर में और मुख में माखन लगा हो, लेकिन बहुत चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश और भ्राज का अर्थ होता है प्रकाशमान। भ्राजमान बहुत सुंदर लग रहे हैं, सूर्य की तरह तेज नहीं, सौंदर्य की किरणें निकल रही हैं, इसका अर्थ यह है। सूर्य से तेज निकलता है, ऐसे भगवान कृष्ण से सौंदर्य निकलता रहता है। भ्राजमान गोकुले यशोदा धिया, जो ईश्वर, जो भगवान यशोदा के भय से, यशोदा धिया कहते यशोदाया धिया भय न, यशोदा के भय से उलू खलात उखल से कूद पड़े और धाव मान, उलू खलात धाव मान, उखल से कूद करके जो भाग रहे थे गोकुल की गलियों में इधर उधर, परंतु बहुत जोर लगा करके भाग रहे थे ईश्वर पर, गोपी के द्वारा अंत में तेज गति से चल करके पकड़ लिए गए। मतलब वो जितना स्पीड से भाग रहे थे गोपी यशोदा, उससे ज्यादा स्पीड से भागे, इसलिए द्रुत्य शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान जितना स्पीड से भाग रहे थे यशोदा का स्पीड ज्यादा था। अंततः सब समय नहीं, शुरू में तो ऐसा लगा कि अब थक जाएगी, गिर जाएगी, पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन अंततः अत्यंततः अति अंततः बिल्कुल लास्ट में परामृष्टम, मृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श, परामृष्ट का अर्थ है पकड़ लिए गए, पकड़ लिए गए, अंततः पकड़ लिए गए। किसके द्वारा? गोप्या, गोपी के द्वारा। यदि संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान रहे तो एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर है। गोपी के द्वारा पकड़ लिया गया जो ईश्वर, और इसके बाद रुदंतम मुहुर बार बार रो रहा था हाथ पकड़े जाने पर, और अपने दोनों करकमल से कभी कभी आंखों को मल रहे थे, और उस पफक पफक कर रो रहे थे, रोने से लंबी सांस चलने से जिनका तीन रेखा से युक्त कंठ कांप रहा था, और इस तरह से मां के तरफ क्रिया को करके जो खड़े थे, ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो रस्सी में बांधे गए। तो ईश्वर क्या है जो रस्सी में बांधे गए? ये भगवान की लीला है। तो सत्यव्रत जी कहते हैं कि वास्तव में वे दामोदर हैं, उनके उदर में दाम लगा हुआ है, रस्सी लगी है, लेकिन वास्तव में वे भक्ति भक्तम है, भक्ति से बांधे गए। कृष्ण बंधी गए जो प्रेमवार की डोरिया में, वास्तव में वो साधारण रस्सी से भगवान नहीं बन सकते हैं, उसने एक ही डोरी थी। उस घटना का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के नवे अध्याय में है, थोड़ा समय से कह देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध के आठवें अध्याय में गोपियों के द्वारा कृष्ण के विषय में बहुत सी शिकायतें हैं मां यशोदा के पास। वास्तविकता यह है कि गोपियां श्री कृष्ण के बाल चापल्य को देखने के लिए यशोदा के पास आती थी, शिकायत करने के लिए नहीं आती थी, देखने के लिए आती थी और सुनने के लिए कृष्ण क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे मां से बातें करते हैं। परंतु आने का कोई न कोई बहाना चाहिए, वो कैसे आ जाए किसी के घर में काम धंधा छोड़कर। तो कृष्ण की बाल लीलाओं का नटखट का ब्यौरा देने के लिए आती थी बहाना लेकर, वह आकर के कहती थी देखो मां, यह है आपका बेटा, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। यह असमय में गाय के बछड़ों को खोल देता है। बछड़े प्राय बंधे रहते हैं, लेकिन जब गऊ वन से लौटती थी उस समय अथवा दिन में भी कोई गाय घर पर रहती थी तो उसके बछड़े को असमय में खोल देता है। असमय वत्सान मुंचन, क्यों? श्रीकृष्ण का की कला थी, वे जानते थे कि बछड़ों को जब खोल दिया जाएगा वे गायों को पीने लगेंगे, तब गोपियां अपने अपने घर से निकल करके बछड़े को पकड़ने की चेष्टा करेंगी, घरों से निकल करके। तो उस समय हम लोग जा करके घर में माखन की चोरी करेंगे। जब तक घर में है तब तक चोरी करने का कोई अवसर नहीं मिल पाता था। तो चोरी का एक तरीका था, एक ही समय में 10-20-50 बछड़े खोल करके भगा दे। तो सब हल्ला होता तो बछड़े खुल गए, गोपियां सब अपने घर से दौड़ती थी इधर उधर बछड़ा रुकने के लिए, कोई दुहने लगती थी, कोई कुछ। और उसी समय सब ग्वाल सखा घरों में घुस करके और माखन खाने लगते थे। किसी किसी दिन जब बछड़े खोलते समय पकड़ लिए जाते थे कृष्ण, और कोई गोपी डांटती थी, मां जो सदस्य कह रही कि जब हम डांटती हैं क्रोध सम जाता है, जब हम डांटती हैं तब ये हंसता है, इसको दुख नहीं लगता है कुछ भी मारने की धमकी देने पर या गाली देने पर, ये हंसने लगता है। और मां ये तर्क क्या करता है, तर्क देता है तुम्हारे बछड़े को खोला हूं कि अपने बछड़े को, तुम्हारे बछड़े को खोला ना तो तुम्हारा बछड़ा गाय का दूध पिएगा बलवान बनेगा, तो क्या मेरे काम में आएगा कि तुम्हारे काम में आएगा? दिन भर बछड़े को बांध करके मार रही हो, ये दूध पिएगा नहीं, कोई अपना बछड़ा थोड़े ला करके पिला दिया हूं, तुम्हारा ही तो बछड़ा पिलाया ना। आप गोपियों का कोई क्रोध रह नहीं जाता था, वास्तव में कभी भी उनका क्रोध नहीं था। क्रोध संजात हास, और यह खूब जानता है कि हम लोग किस समय घरों में नहीं रहती है, इसको पूरा पता हो गया है 24 घंटे का, पूरा रूटीन जानता है कि कब कहाँ औषधान रहती है। अच्छा, रानी जी अकेले आता तो कोई बात नहीं, कितना खाएगा, छोटा सा बालक है, लेकिन इसका पूरा दल है। पूरा दल है। अच्छा, उस पर भी मां जो सुबह कहते जाने दो माखन ही खा गए, तो खा गए इसके लिए थोड़ा चिंता है, ये जितना खाता है उससे तो 100 गुना ये भानरों को और इधर उधर फेंक देता है, और बर्तन भी फोड़ देता है, भांडन भी नपती बर्तन भी फोड़ देता है, और बच्चों को चीटी काटता है, उनकी शिखा को बांध देता है, जब उठते हैं तो रोने लगते हैं, बच्चों को तंग कर देते हैं। और जिस घर में माखन नहीं मिलता है, चलौंचा रहता है, तो उसके लिए उपाय रचता है, पीढ़ों को ऊपर करता है अथवा किसी गोप के पीठ पर चढ़ करके। तो मां ने कहा कि थोड़ा और हाई रखो, थोड़ा और ऊंचा रखो, कितना उपाय करेगा? नहीं, जहां पर इसका हाथ नहीं पहुंच पाता है तो नीचे डंडा से उसमें छेद कर देता है और मुख रोकता है ऐसे। सभी बारी बारी से मुख रोक रोक करके पीते हैं, खाते हैं। कैसे पता लग जाता है कि इसमें तुम्हारा माखन रखा हुआ है? क्या कहें माँ जी, वो जो माखन है स्निग्ध होता है, जहां तक बर्तन में रहता है तो सिक्त हो जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर यहाँ तक भींगा हुआ है। ये जरूर ताजा माखन है, इसमें चाहे यह है वह है ऐसे है ऐसे है, बहुत उपाय करता है। और तो माँ जो सोने कहा किसी तरह से उसको दूर करो, ढक करके रखो, दूर करो। तो कहते हैं दूर भी कैसे रखें, जिस घर में माखन नहीं मिलता है उस घर को इतना साफ देता है, कहता है इसमें दरिद्रता का निवास है और कल इस घर को जला दूंगा, बाप रे बाप, यहां मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो इस डर से हम लोग ठेके को थोड़ा कम ऊंचा रखती, हम लोगों को इसके लिए रखना पड़ता है, नहीं रखने पर इतना गाली देता है, इतना गाली देता है कि वास्तव में जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं उनको कृष्ण बहुत गाली देते हैं, और भगवान के अभिशाप से ही घर में दरिद्रता बसी रहती है। भगवान के खाने के लिए हमेशा रहना चाहिए। उनको भोग लगाना है बाहर पर, तो जिन घरों में नहीं मिलता है वहां पर इस तरह से करता है। और दूसरा उत्पाद करता है कि यदि जिस घर में माखन नहीं मिला तो उस घर में लिपे पोते स्थान पर देवताओं के स्थान में जाकर पेशाब कर देते, इतना उत्पाद कर रहा है। और यहां पर देखिए आपके सामने ऐसा साधु जैसा है, ऐसा साधु जैसा है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रही थी, वही देखने के लिए जाती थी, और श्री कृष्ण अपने माँ का आंचल पकड़ करके पीछे छिपे रहते माँ के पास, और देखते हैं कि माँ पर क्या रिएक्शन होता है। लेकिन गोपियां कितना भी उलाहना देती हैं तो माँ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, वो हंसने लगती है, अच्छा ऐसा किया, अच्छा ऐसा किया। यह सुनते ही कृष्ण सामने आकर के गोपियों को कहते हैं ये लाहना दे रही है, लाहना दे रही है, आखिर मेरी माँ है ना, मुझे थोड़े मारेगी। और यही देखने के लिए गोपियां रुक जाती। लेकिन इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी जो कथा चालू कर रहे हैं, तो उसके कथा के उपक्रम में प्रारंभ में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि गोपियों का बार बार उलाहना आने से माँ को चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र का स्वभाव बिगड़ रहा है, आदत बिगड़ रही है, हमारे घर में इतना दूध है, माखन है, दही है, घी है, सब भरा पड़ा है, और ये एक राजा का पुत्र है, मेरा पुत्र है, दूसरे के घर में जा जाकर के खा रहा है, वो भी चोरी करके, यह ठीक नहीं, इसकी आदत बिगड़ती जाएगी, आज माखन चुरा रहा है तो कल दूसरा भी चुराएगा, किसी का आभूषण चुराएगा, कपड़ा चुरा सकता है। तो जब चोरी की आदत है तो आज तो बच्चा है, बुद्धि नहीं है, तो धन चाहिए, यह चाहिए, जैसे जैसे बुद्धि विकसित होगी तो फिर आगे के निर्वाह के लिए धन चुराएगा, आभूषण चुराएगा, और कहीं आदत और बिगड़ती गई तो जवान होने पर किसी की छोरी को, लड़की को चुरा कर ले जाएगा, ये भी तो कर सकता है। तो माँ को बहुत चिंता हो गई अपने पुत्र के प्रति। माँ यशोदा पूर्ण कृष्ण स्नेहमयी है, कृष्ण के सेवा के अलावा, स्नेह के अलावा माँ के शरीर में कुछ भी नहीं है। जो भी सोच रहे थे कृष्ण के हित के लिए कि अपने बच्चे को ठीक करना चाहिए, दूसरे के घर में नहीं जाने देना चाहिए, तो उसने बहुत मनोयोग के साथ यह निश्चय किया कि लगता है कि मेरे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, यदि हमारे घर का माखन अच्छा होता तो मेरा पुत्र दूसरे के घर के माखन की स्पेयर क्यों करता, क्यों चाहता है। तो विचार करके एक दिन सोची कि अब ऐसा माखन उत्पन्न करूंगी, ऐसा माखन उत्पन्न करूंगी कि कृष्ण दूसरे के घर में जाने का नाम नहीं लेगा, अपने घर में जब माल मिलेगा खाने को तो दूसरे के घर में क्यों जाएगा। ये माँ ने सोचा, बहुत अच्छा सोचा। तो इसके लिए एक दिन माँ ने पद्मगंधा गाय का दूध मंगाया। ब्रज में कुछ स्पेशल गौएं रहती थी जिन्हें, जिनके शरीर से कमल की गंध निकलती थी, पद्म की गंध, उन्हें पद्मगंधा गाय कहा, और उन गायों को स्पेशल चरागाह में चराया जाता था जहां की घास सुगंधित घास कोमल कोमल। जैसे आजकल के लोग जो ये डेयरी देखते हैं, गौएं बंधे रहते हैं और चीज खाते रहते हैं, अनाज वगैरह, वो लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गौएं घास खा करके कितना सुखी होती हैं, चर करके, खास करके अपने मुख से। तो सुगंधित गायों को चरा, घासों को खिलाया जाता, चराया जाता था उन गायों को, उनका दूध लेकर के वो औंटी, औंट में काट के गर्म करना, बार बार गर्म करना, गाढ़ा करना, उसके बाद उसमें जामुन दिया, और दीपावली के दिन भोर में वह स्वयं ही दही मथने लगी। इंद्र पूजा का दिन था, एक दिन के बाद ही, तो इंद्र पूजा की तैयारी चल रही थी, बहुत वर्ष वार्षिक नियम था, तो घर की दासियों को मां जशोदा ने अन्य कार्यों में लगा दिया कि आप तुम लोग दूसरा काम देखो और कृष्ण के लिए मैं दही मथूंगी। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और माखन अच्छा होना चाहिए इसके लिए मां ने रेशमी साड़ी पहना। कौन सा वस्त्र पहन करके कौन काम किया जाता है वस्त्र का भी बहुत महत्व है। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं तो स्वच्छ साफ धोया हुआ वस्त्र पहनते हैं, वैसे नहीं कि पैंट पहन करके और चले गए आती करने, ऐसा कभी नहीं होता है। ये पैंट सेंट में दूसरा प्रमाण होता है, देवता लोग कभी नहीं पहनते। ये पैंट सेंट से असुरों का पहनावा है वास्तव और वो घूम घाम करके पश्चात जगत से आया है ना, उसके पर अंग्रेजों के आने के पहले इधर लोग कोई पैंट सेंट नहीं पहनते, पैजामा पहनते थे चूड़ीदार। तो सब चीज का महत्व होता है। छम वास पृथुकटि तटे विभ्रति सूत्र मध्यम पुत्र स्नेह स्मित कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रु रज्जा कर सहस्रम भूचलत कंकड़ कुंड बेच सूनम वक्रम कबर बिगलन मालती निर्म मंथन। श्री सुखदेव गोस्वामी मां जशोदा के दधिमंथन के समय जो छवि हो रही थी उसका वर्णन कर रहे हैं। छमम वास पृथु कटि कटे, मां जशोदा पूर्ण युवती स्त्री थी, आयु ज्यादा थी लेकिन शरीर पूर्ण यौवन में था। भगवान के माता पिता कभी वृद्ध नहीं होते। अगर वृद्ध शब्द का प्रयोग कहीं है तो उसका अर्थ ये होता है बड़ी उम्र, बड़ी उम्र उसका अर्थ होता है। तो शरीर बुरा नहीं होता है, पूर्ण ज्योति है, उसके बड़े बड़े नितंब हैं और कमर में लहंगा कस करके बांधी थी। छमम वास पृथु कटि तटे विभ्रति, पृथु कटि तटे कटी कमर को कहते हैं और तट तात नीचे नितंब, ऊपर तो छीण होता है उधर कटी, और तो पृथु नितंब पर वह रेशमी लहंगा कस करके बांधी थी। छमम वास पृथु कटि तटे विभ्रति सूत्र मध्यम, सूत्र मध्यम खूब अच्छा से मध्यम का अर्थ बांधा हुआ, सूत्र से बांध ली थी। यह सूत्र मध्यम से तत्पर्य है करधनी बेल्ट चौड़ा सोने का बांधी थी उसके ऊपर। पुत्र स्नेह स्मित कुछ जुगम जात कंपन चुद्री, और मां के दोनों स्तर चुचुआ रहे थे। कृष्ण के लिए दही मत रहे तो कृष्ण को दूध पिलाने के लिए दोनों स्तर उमड़ रहे थे, तो स्तनों से दूध चू रहे थे। एक बहुत ही सुंदर भाव लिखा है भक्त ने कि मां के दूध जो स्तन से चू रहे थे, तो वे दूध सोच रहे थे कि मां आज ऐसा माखन निकालने जा रही है कि कृष्ण खा लेंगे माखन, उनका पेट भर जाएगा, तो आज हमको नहीं पिएंगे। तो दूध विकल हो रहा था, इसलिए बाहर आ रहा था कि मां की दृष्टि पड़े, लेकिन मां तो दही मथने में तल्लीन थे। तो दूध चू रहे थे, चू करके मां के कंचुकी के ऊपर आ रहे थे। पुत्र स्नेह स्मित कुछ जुगम, पुत्र के स्नेह से दोनों चुचुआ रहे थे। जात कंपम चशुद्ध, और स्तने में कंप हो रहा था। एक तो ऐसे चलाने से कंप हो रहा था, लेकिन कृष्ण आज हमको नहीं पिएंगे माखन खाकर संतुष्ट हो जाएंगे, इस भय से स्तन काट रहे थे। रज्जुआ कर से श्रम भूत चलत कंकड़ कुंड ले चल, और रज्जु आकर्षित कर रही थी। आप सभी जानते हैं कि दही का बड़ा मटका होता है और उसमें मथानी होती है, मथानी को चलाने में दही को आंदोलित करना पड़ता है, तो मेहनत का काम होता है। देखने में लगता है कोई गोपी चला रहे बहुत आनंद की बात है, लेकिन उसे मेहनत लगता है, हाथ थक जाता है। हमको याद है हम झारखंड कृषि में एक बार पहाड़ पर गए थे, एक जगह पर एक गोपी मथ रही थी अपने बच्चे को गोद में लेकर के,
हम लोग टेप रिकॉर्ड कर लिए थे, हमको तो याद आ गया कि अरे भगवान इसी तरह गोद में करते रहते हैं, मैं मथुन मंथन करती होगी। हम लोग टेप कर रहे थे, घर आवाज गदमंथन के शब्द को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने कहा उस गोपी से, थोड़ा बच्चे को रुला सकती हो किसी तरह से? और ऐसे जब ही कहा तब ही बच्चा रोने लगा, ये करने लगा, वो भी आया हुआ है तेज। तो हमारे खतरे को पुष्ट रो रहे हैं, पुष्ट रो रहे हैं। तो उसे हमने कहा कि बीजी जरा हम मत हैं, तो हट गए। हम मथने लगे तो दही इतना बड़ा मटका था, दही अभी गाढ़ा था, तो चलाने में हाथ दुखने लगा। तो सुबह को स्वयं वर्णन करते हैं कि रज्जु परसे श्रम भूज चलत कंकर कुंडले, रज्जु खींचने में भुजाओं में श्रम हो रहा है, भुजाओं में श्रम होने सारे शरीर सिन्न हो गया, मुख पर पसीने की बूंदें आने लगी। भोर का समय था, दीपावली का सवेर है, भोर सर मां के शरीर पर पसीना आने लगा, विशेष करके मुख पर, सुन्नम बक्तरम कबर बिगलम। और कबर में जूरे में जो मालती के पुष्प खोसे गए थे वे सब गिरने लगे जैसे चरण, इस तरह से दही मत रही थी। और दही मत समय श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को ही गाती जा रही थी। इस तरह से मां के स्वरूप का वर्णन किया है, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, ये तो सब सप्ताह हमें बहुत विस्तार किया जाता है। तो इस तरह से जब मत रहे थे, मां को केवल कृष्ण का स्मरण हो रहा था, कृष्ण की लीलाओं का, उनका चलना हंसना खाना चोरी करना या पूतना उद्धार आदि, पूतना का दौध आदि, यही सब लीलाओं गाती जाती थी, सोचती जाती थी। उसको ध्यान नहीं था दही मथने का, काम कर रहे थे, मन भगवान में था, बाल लीला में। तब तक अकस्मात भगवान प्रतिदिन जब जगते थे उससे पहले जग गए, और जगे जब कृष्ण तो उन्होंने मां को देखना प्रारंभ किया। बच्चों का स्वभाव होता है वे मां के गोद में रहते हैं और मां का आस्तन पीते रहते हैं, पीते समय कुछ गाते भी हैं, अपना आनंद उच्छ्वास प्रकट करते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो कृष्ण तो मां के गोद में ही सोते थे, पीते रहते थे, रात में जब भी उनकी इच्छा करे पीते रहते थे, भोर में पीते रहते थे, उनको नहाने धोने मुंह धोने का कोई नियम नहीं, ऐसे ही बच्चे पवित्र होते। जो ही जगे तो आंख बंद किए ही और स्थल देखने लगे, तो मां कहां है? जैसे हाथ किए तो बहुत दूर हाथ करने पर भी मां नहीं थी, मां तो दहीमंथन कर रही थी, बैठ कर थी नहीं, देखने लगे मां कहां चले गए ए करने लगे। इस तरह से रो रहे थे जैसे उन्हें बहुत भूख लगी, मां कहां गई। इस तरह से वे ए करते हुए रोते हुए खोजने लगे मां को, तो उधर से आवाज आ रही थी, तभी मंथन किए, मां का कंठ वे पहचानते थे, मां गा रही है, इनकी ही लीलाएं गा रही, तो मां का स्वर सुन करके धीरे धीरे वहां चले गए जहां वो दही मत रहे। तो भगवान देखने लगे कि मां तो बिल्कुल विभोर है इसको, तो क्या करें कि यह दही मंथन कर्म रोके और हमको दूध पिला, जबकि इनके लिए ही माखन निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान के अलीला है। उन्हें सोचा कैसे रोके, भगवान ने एक उपाय सोचा है कि जिस मंथन दंड को घुमा रही है उसी को हाथ से पकड़ करके ब्रेक लगा दू, घूमने न पाए, तब मां की बाह्य वृत्ति होगी। और वही किया उन्होंने, अपने छोटे छोटे हाथों से मंथन दंड को नीचे पकड़े घड़ा के ऊपर, ऐसे पकड़ करके और जान कर दिए, तो अनंत शक्ति भगवान जिसको पकड़ गया वो ऐसे मंच सोदा घुमाती थी तब तक अकस्मात स्टक हो गया, नहीं आ रहा था, तब उसने ध्यान से देखा क्या हो गया, मंथन दल घूम क्यों नहीं रहा है। तो जब वो आंखें खोली बाह्य वृत्ति की तो देखती है कृष्ण आ गया, कृष्ण पकड़ा है। तो मैं सोचने लगी अच्छा कितना बुद्धिमान है, भगवान इसकी बुद्धि भी विकसित कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता भी, किस तरह से पकड़ा, मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए। मां इस पर प्रसन्न हुई, लेकिन देखने लगी कि आगे क्या करता है। मां उठाई नहीं कृष्ण को, तो कृष्ण देखे कि मां ने काम रोक दिया और देख रहे कि क्या करता है। तो श्री कृष्ण उसके बाद मां के हाथ को पकड़े, ऐसे ऊपर हाथ करके अपने हाथ को पकड़े और एक पैर खड़ा कर दिए मटकी के ऊपर और मां का बांह पकड़ करके ऐसे और उसके गोद में चढ़ गए। मां ने कोई प्रयास नहीं किया, मां यह देख रही थी कि बच्चे की बुद्धि विकसित हो रही है। रोज रोज चोरी करते करते ही बहुत बुद्धि हो गई थी। वो चढ़ और चढ़ करके स्वयं ही मां की एक कंचुकी को हटा करके और उनका जो आहार है दूध वो पीने लगी, खूब आराम से पीने लगी। पीने लगे तो प्रेम के भूखे भगवान, उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, मां का स्नेह में दूध वो कम नहीं हो रहा था, दूध कम नहीं हो रहा था और कृष्ण की भूख जा नहीं रही थी, दोनों में होड़ लग गई। प्रेम में और सेवा, सेवा हो रही थी, भगवान को दूध पिलाती जा रही थी, पिलाती जा रही थी और भगवान पीते जा रहे थे, वो देर तक पिए। इसी बीच अंगीठी पर रखा हुआ पद्मगंधा गाय का दूध जौटा जा रहा था, उसमें उफान आ गया आंगन में, उफान आ गया। हरिश्वर जी कहते हैं उस दूध ने ये सोचा कि भगवान अपने मां का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो मैं जो आग में मरमर कर तपस्या कर रहा हूं मैं किस काम आऊंगा, इसलिए मां के सामने आत्महत्या करना चाहिए तब उसको दया आएगी। तो शायद ये सोच करके दूध उबल गया, आग में कूदना चाहता था, तब तक मां की दृष्टि पड़ी। तो कृष्ण के तृप्ति या तृप्ति पर मां का ध्यान नहीं गया, वो तुरंत कृष्ण को हटा करके जमीन पर रख करके और दौड़ी दौड़ी, जो ही जा रही थी तो ही दूध शर्म के मारे नीचे आ गया। उसने सोचा कि मां के प्रेम सुख में मैं बाधा दिया। तो मां ने देखा कि दूध औटा जा चुका है तो उसको उतार करके रख। सतत बल्भाचार्य जी ने एक प्रश्न किया है कि कृष्ण को लेकर के ही क्यों नहीं गई, कृष्ण तो कोई इतना भारी नहीं थे, दूध उतारने तो कृष्ण को लेकर के गई होती। मतलब स्वयं उत्तर देते हैं कि नहीं, कृष्ण को लेकर के गई होती तो जाने में कृष्ण के ओठों में लग जाता शरीर, दुख होता या यादव उतने वेग से नहीं जा सकते, तो इसलिए कृष्ण को उतार करके गई। अब भगवान को क्रोध आ गया, बाप जी बाप, मेरी तृप्ति पर इसका कोई ध्यान नहीं है, थोड़ा दूध जल ही जाता तो क्या हो जाता, इतना दूध भरा पड़ा है घर में और थोड़ा सा दूध बचाने के लिए और मेरी इतनी भारी उपेक्षा की है। ये बच्चे भी मान चाहते हैं, वास्तव में छोटा छोटा होते हैं लेकिन वो भी बहुत बड़ी बड़ी बात सोचते हैं, क्यों हमको दूध से उतारी, क्यों नहीं पीने दिया, थोड़ा सा दूध बचाने के लिए हमारा तिरस्कार कर रही है। तुम्हारा तिरस्कार क्या, दो मिनट के बाद आकर के पिलाएगी, फिर तो उसको आकर के पिलाना ही था, लेकिन भगवान इसी पर एक लीला के क्रोध आ गया, दिव्य क्रोध, लाल लाल ओठों का स्पर्श करके क्रोध धन्य हो गया। यदि प्राकृतिक क्रोध भगवान में संभव ही नहीं है, लेकिन क्रोध की मुद्रा देखने लगे, ओठ फड़कने लगे भगवान के क्रोध से, इस तरह से कंजूस बन रही है, थोड़ा सा दूध की हानि नहीं सह सकती और मैं अपना धाम छोड़कर इसका पुत्र बना और मेरी इतनी उपेक्षा है, सब लोग सारा काम छोड़कर के मेरी सेवा करते हैं और मुझको फेंक करके और जा रही है दूध बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो क्रोध आ गया, क्रोध आते ही अपने लाल लाल ओठों को अघर को भगवान अपने उजले उजले दांतों से दबा दिए। ये क्रोध का स्वभाव होता है, व्यक्ति क्रोधित होता है तो अपने ओठों को दबाता है। हरिश्वर जी कहते हैं लगता था कि रजोगुण पर सतगुण शासन करने लगा है, ठीक नहीं है, लाल रंग रजोगुण का है और श्वेत सतगुण का, तो मानो भगवान के ओठों पर कंट्रोल कर रहा है सतगुण, क्रोध ठीक नहीं है। जो कुछ भी है इस तरह से क्रोध में हो गए और चुहने लगे। क्रोध में व्यक्ति होता है तो तोड़ फोड़ ही तो करेगा और क्या करेगा। छोटा सा बच्चा सोचने लगा, अच्छा दूध बचा रही है ना, मैं इस घर में आग लगा दूंगा, बर्बाद करके रहूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो बता देता, क्रोध में देखने लगा इधर उधर, एक छोटा सा मसाला पीसने वाला लोढ़ा मिला, पत्थर का टुकड़ा, उसको सीला पुत्र कहते, वो मिल गया। सोचा अच्छा होता है मिल गया। तो ये जो मटका जो कई वर्षों से दूध दही खाया है, मजबूत है, थोड़ा सा दूध को बचाने गई ना, मैं इतने अच्छे मटके को अभी चूर कर देता हूँ और इसका दही भी बढ़ जाएगा, दही हो जाएगा, इतनी बड़ी हानि होगी। उपाय सोचने लगे क्या करूं, इसको छोड़ना चाहते थे लेकिन सोचे कि अगर आवाज कहीं कान में चली जाएगी माँ के तो आकर के खूब अच्छी मरम्मत कर देगी। तो इसीलिए बड़ी चतुराई से उसके पेंडी में जहां पर दही भरा हुआ था, जहां पर उसके नीचे उन्होंने मारा ऐसे जोर से कि आवाज न निकलने पावे और छेद हो जाए, मटका पूरा न फूटे, छेद हो जाए, इतना छेद हो जाए कि दही सारा बह जाए। उसके बाद तो माटी के बर्तन की मरम्मत होती नहीं है, एक जगह छेद हुआ तो हुआ, खत्म हुआ। ऐसे मारे तब तक दही जो पतला हो चुका था मथने से बलबल बलबल बह करके चारों तरफ फैल गया। अब तो भगवान बड़े खेद में पड़े कि हम कहाँ भागे, अब कहाँ भागे, किस कहाँ जा। जो भगवान तीन पद में सारे ब्रह्मांड को नाप लिए थे, वे अब दही के क्षेत्र को लांघने में समर्थ नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें। तो सोचे कि माँ तो अब आने ही वाले, तब तक उसी दही पर छप छप भागे, तय रखते लेगा। भगवान का अद्भुत माधुर जैसे पर भागने लगे। भाग करके गए दूसरे घर में, जहां पहले का माखन रखा हुआ था उसको उतारे, पहले उखल को उल्टा किए, उखल को तुरंत उल्टा करके और ऊपर से उतारे, उतार करके और खाने लगे। और बानर जुट गए उसमें, उनको बांटने लगे और देखते जाते थे कि माँ आ रही है, माँ आ रही है। चौद विशंकित आंखों से देखते जा रहे थे, कभी कभी खाने का नाटक करते, आंखों में आंसू भर गया था। ये दिखा रहे कि मैं भूख से मर रहा हूं और फिर भी मेरी इसने उपेक्षा किया है, क्या करूं, बासी माखन खाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, जीऊंगा कैसे। इतना छोटा सा बच्चा, वास्तव में जो कुछ भी भगवान कर रहे थे वो भी माँ के प्रति स्नेह से कर रहे थे। बच्चे जब इस तरह की बात माँ के साथ करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है कि हमको, हमारे साथ इसकी प्रीति है, हमको अपना समझ रहा है, इसको विश्वास है कि माँ हमें मनाएगी, हमको मिठाई देगी, चाहिए करेगी, वह करेगी। वास्तव में एक बहुत बड़ा सुख है इस संसार में। बच्चे जब बोलते हैं, स्पर्श करते हैं, रुठते हैं तो उनको मनाने में बहुत बड़ा सुख मिलता है। ये गृहस्थों को इसका अनुभव होता है। एक कवि ने कहा है कि यदि इस संसार में अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने का सुख और उठे हुए बच्चे को मना करके गोद में लेकर के उसका हंसता हुआ चेहरा देखने का सुख नहीं होता तो कौन इस गृहस्थी को स्वीकार करेगा। ये दो सुख है, अपने बच्चे को गोद में खिलाने का और अपनी रूठी हुई प्रिया को मनाने का, ये दो सुख है। अन्यथा इस घर की हस्ती में कौन पड़ेगा। और वास्तव में बात बिल्कुल सत्य है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी पत्नी से, रुक्मिणी जी से परिहास किए कि तुम हमको छोड़ दो, जाओ दूसरे को से विदा कर लो। फिर ऐसे अकस्मात कहने लगे हाँ वैसे नहीं, हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, हम स्त्री में आसक्त भी नहीं रहते हैं, हमसे तो वही लोग प्रेम करते हैं जो फक्कर होते हैं, अकिंचन होते हैं, हमसे दूसरे लोग प्रेम नहीं करते। तो रुक्मिणी जी मां ने पूछी तब आप विवाह क्यों किए हमसे। भगवान कहे तो हम तो केवल जरा संघ शिष्यपाल आदि का मान मर्दन करने के लिए तुमको लाए थे, तुमने हमारी तो यह शक्ति नहीं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन मिले, सारी इच्छाएं पूर्ण हो तो किसी राजा से विवाह कर लो, विवाह में अगर नया कुछ खर्च लगेगा तो मैं भी मदद कर दूंगा। लेकिन अच्छा होगा उस समय तुमने सोचा नहीं, कुछ भिकमंगों ने मेरी प्रशंसा कर दिया, नारद आदि ने इसी आवेश में आकर तुम मेरे साथ विवाह कर ले। तुम तो रुक्मिणी की ये नहीं समझ पाए कि भगवान प्रयास कर रहे हैं, वो तो गिर गई बेहोश होकर। फिर भगवान उठाए, उनके मुख को पोछे, केशों को ठीक किए, अपने गोद में बैठा करके और लगे कहने, तुमने ये नहीं समझा कि मैं परिहास कर रहा हूं। तो रुक्मिणी की पुष्टि है कि आप परिहास क्यों किए, ऐसा परिहास किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रिय गृहस्थ के लिए यही तो एक सुख है कि कभी पत्नी से एकांत में परिहास किया जाए और जो रूठ जाए तो मनाया जाए। लेकिन तुम तो रूठ भी नहीं रही हो, इतनी भोली भाली हो कि भक्त से गिर पड़ी। बताओ, मैं तो ये देखना चाहता था, भगवान कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मैं तुमसे ऐसी बात कहूंगा, कह रहा हूं, तो तुम अपने ओठों को दांत से दबा लो, मेरे तरफ तिरछी चितवन से देखो और डांटो, कहो कि कभी ऐसी बात मत बोलना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन हमको तो यह अभी सुख नहीं मिला, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने कहा है कि घर गृहस्थी में यह एक सुख है। तो इसी तरह से भगवान जो मां के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वास्तव में मां को सुख दे रहे हैं इन व्यवहारों से। बाहर से देखने में लगता है कि ये क्रोध की लीला कर रहे हैं। तो दही के ऊपर से लम्बे लम्बे पैर से जा करके माखन खाने लगे एक उखल के ऊपर। माँ जब दूध उतार करके आई तो देखी कि मटका तो फूट गया है, दही फैल गया है। तुरंत समझ गई कि किसका काम है। ऐसा नहीं कि कोई अकस्मात ईटा गिर गया ऊपर से फूट गया या बिल्ली गिरा गया, समझ गई तुरंत और हंसने लगी। हंसने लगी दैव गति पर कि मैं थोड़े से दूध के लिए दौड़ करके गए और उधर इतनी बड़ी हानि हो गई। अद्भुत दैव की गति। और हंसने लगी कि बच्चे की भावना देखो, वो थोड़े से ही अपना तिरस्कार मान गया, अपना इंसल्ट मान जाएगी। तो देखने लगे, हंसने लगे। लेकिन माँ ने सोचा कि अब तक गोपियों ने कहा था कि हमारे घर का बहुत बर्तन थोड़ा है, लेकिन आज तो घर कहीं फोड़ दिया, सचमुच ये फोड़ रहा होगा, फोड़ते फोड़ते आदत हो गई है इसको, इसीलिए हाथ में छड़ी ले लिया, धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं। माँ कैसे किसी पर प्रहार कर सकती थी, वो तो पूर्ण स्नेहमयी है, केवल धमकाने के लिए हाथ में छड़ी लेकर के और दबे पैर से धीरे धीरे चलने लगे, जिससे उसका नूपुर न बजे। धीरे धीरे पैर रख रही थी, कहाँ गया। कृष्ण का अन्वेषण करने में माँ को कोई असुविधा नहीं हुई, क्योंकि चरण चिन्ह बता रहे थे कि वो वहां से कहाँ गए। क्योंकि उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि दही के ऊपर से भाग रहे हैं तो चरण की छाप पड़ती जा रही, और भगवान ये समझ रहे थे कि मैं तो सिक्योर हूँ, माँ मुझको नहीं देख पाए, और माँ चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए जा रहे थे धीरे धीरे। तो देखी तो एक उखल उल्टा करके उसके ऊपर बैठा है और छीके से मटका उतार लिया और खा रहा है और बांधों को दे रहा है। तो पीछे पीछे और धीरे धीरे जाने लगे, तब तक कृष्ण ने देखा माँ को, देखते ही कह करके मटका छोड़ करके चले भाग। और कौन खाने जाए, उसी को यहां लिखा गया, उल्लू खला था मानव उखल से बहुत जोर से भागे, रोते हुए गिगड़ाते हुए भागे। तो भागे तो माँ भी पकड़ने के लिए चल दी, पकड़ने के लिए चली। पहले तो अपने घरों में आंगन में इधर उधर भागते रहे भागते रहे, उसके बाद निकल करके गोकुल की गली में भागने लगे। भागते भागते समय सुंदर उसमें वर्णन करते हैं कि माँ तो बिल्कुल थक गई, बड़ा शरीर था और कृष्ण तो छोटी कार के समान भाग रहे थे बहुत तेज गति से। वैसे भी सच्चिदानंद घन भगवान भाग रहे थे। माँ तो ये सोच रही थी छोटा बच्चा है कितना भागेगा, अब पकड़ लूंगी अब पकड़ लूंगी, लेकिन बहुत देर तक भागते रहे। लेकिन अंत में माँ जसोदा ने झपट करके कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान ने देखा कि माँ थक गई है, वे स्वयं ही पकड़ में आ गए। कृष्ण पीछे देखते जाते थे पीछे देखते जाते थे, भागते जाते थे, और जब निकट देखे मां को तो हाँफते जाते थे, हाँफते जाते थे, फिर देखते थे, भागते थे, हाँफते जाते थे, हाँफते थे, और उनके कंठ कांप रहे थे। भागते भागते अंत में भगवान ने यह नाटक किया कि मैं तो बिल्कुल थक गया हूं। मां गई और जा करके अपने बाएं हाथ से ऐसे पकड़ ली, हाथ को आगे करके पकड़ी, पीछे से नहीं पकड़ी, कृष्ण को चोट लग सकती थी। या मान लो जब पीछे से कुछ पकड़ती है और कृष्ण झटका देता है तो उसके शरीर में रो रहे थे, रुदंतम मुहूर् नेत्र जुग्म मृजंतम, बारम्बार रो रहे थे, आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। दाहिने हाथ को मां ने पकड़ा था तो बाएं हाथ से पोंछ रहे थे, बाद में मां ने सोचा कि ये हाथ दुख गया होगा तो बाएं हाथ को पकड़ ली, तो दाहिने हाथ से सोचने लगे। और कभी भी कृष्ण रोते थे तो मां बड़े स्नेह से आंसू पोंछती थी, लेकिन भगवान आज इतना लाचार हो गए हैं, बेचारा हो गए हैं कि मां ही मारने आई है, अब उनका आंसू दूसरा कोई पोछने वाला नहीं था तो स्वयं ही आंसू पोछ रहे थे। और वो आंसू पोछने नहीं आ रहा था, आंसुओं से काजल गीला होकर के उनके गाल पर इधर उधर फैल रहा था, इससे उनकी और शोभा बढ़ रही थी, और सुंदर लग रही थी। ऐसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं सत्यव्रत जी कह रहे हैं, जिस ईश्वर की ऐसी दुर्दशा हो रही है उसको मैं प्रणाम करता हूं। घूम रो रहे थे, रुदंतम मुहुर् नेत्र जुग्म मृजंतम, करांभोज जुग्मे में सातंक ने, करांभोज जुग्मे भगवान के दोनों हस्त कमल के समान सुकुमार थे, और उन्हीं से वे अपनी आंखों को मल रहे, काजल फैल रहा था अपने गाल में, गल में उसे और सुंदर लग रहे थे। और मुहुर् श्वास कम पत्र के विवेकांक कंठ स्थित ग्रव्य दामोदरम भक्ति बल, बार बार फफाक रहे थे, फफाक रहे थे, माँ की तरफ देख करके कि हाय रे यार, माँ जब मेरे विपरीत हो गए तो दुनिया में मेरा कौन सहारा रहा, कृष्ण ये सोच रहे थे। और जब माँ ने खास करके रस्सी उठाया तब तो और आह, अब तो पशु जैसे बांध कर रखे, कृष्ण को ये भाव हो गया कि किसी दिन नहीं खोलेगी, जैसे बांध करके पशुओं को घास डाला जाता है ऐसे ही बांध करके रखेगी। आय बाप आय दादा ये करने लगे, आप कैसे जीऊंगा, खेलने को नहीं मिलेगा, कहीं घूमने को नहीं मिलेगा, इस तरह से रो रहे थे, फफा रहे थे। जो बच्चे रोते हैं आपने देखा होगा, लंबी सांस चलती है और गला वाष्प से भर जाता है, आंसुओं से भर जाता है, तो इसलिए सांस लेने में भी कुछ कठिनाई होती है और बोलने में, इस तरह फपक फपक करके रो रहे थे। कृष्ण के कंठ में तीन रेखा शंख जैसे, ग्रीवा के ऊपर मां की तरफ विचारी दृष्टि, सातंक नेत्रम भयभीत नेत्र से, और अनुकंपित मां अनुकंपा करे, मेरी दशा को देख करके दया करे, मुझे बांधे ना, मुझे छोड़ दे, मुझे ना पीटे, इस तरह से देख रहे थे। ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। सातंक नेत्रम, नेत्र में इतना भय था और इतनी आशा भरी थी दया दृष्टि हो जाए मां की, छोड़ दे, लेकिन मां तो मां थी, रोज तो क्षमा किया था लेकिन आज नहीं क्षमा करेगी। तो मां ने देखा कि बहुत डर गया है, बहुत डर गया है, तो छड़ी छोड़ दिया, छड़ी फेंक दिया। जब छड़ी फेंक दिया शुरू में, जब छड़ी फेंक दिया तो कुछ आश्वासन आया, और तब तक रस्सी उठाने लगे, तो छड़ी से तो एक छड़ी पीट करके छोड़ देती, दिन भर घूमते, लेकिन अब तो पशु की तरह बांध कर रखेगी, और रोने लगे बांधने लगी मां। सबसे पहले अपने केस में जो जोड़ा बांधी थी, रेशमी वस्त्र था, रेशमी रस्सी लगभग डेढ़ फीट रहा, तो उसने सोचा कि इसी रस्सी से इसको मैं बांध दूं, तब तक दूसरा दही मत लूंगी, इसके लिए माखन निकालूंगी और इसके बाद मना लूंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी। उस समय रो रहा बांध दिया। हाँ तो बांधने चले तो सबसे पहले उखल में एक बार लपेट ली, बांध ली दूसरे अब पहला छोर, और दूसरा छोर अपने बच्चे को पकड़ करके खड़े थे, भाग नहीं सकते थे, हम मां को पकड़ने की जरूरत नहीं थी, खड़ा रहो। और कृष्ण रो रहे थे, घिघिया रहे थे, तो रस्सी का दूसरा छोर ला करके बांधना चाहिए, तो आते हैं तो मुट्ठी भर कमर में दो अंगुल कम हो गई रस्सी। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी रस्सी मंगाई, दूसरी रस्सी लाई, तीसरी रस्सी लाई, और अनेक रस्सियां जोड़ती थी, गांठ लगाती थी और कमर में बांधने को आती थी तो दो अंगुल कम हो जाता। तो मैं रस्सी बांधते बांधते जोड़ते जोड़ते और बच्चा बंध नहीं रहा था, इसलिए बड़ा मानसिक चिंता टेंशन हो रहा था, इसलिए वो बहुत दुखी हो रही थी, वो पसीना से लथपथ हो गई। भागते समय ही कुछ गोपियां देखी थी कि यार लाला को सजा मिलेगी, और इसके बाद जब रस्सी में बांधने लगी तो आया करके देखने लगी। तो गोपियां कहती थी, रानी जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, क्यों बांध रही है, क्यों बांध रही है, क्यों बांध रही है। तो जसोदा जी कहती थी, तुम लोगों ने इसको नटखट बनाया है, तुम लोगों ने नटखट बनाया है, आकर के हमारे पास उल्हाना देती है, और जब मैं अपने बेटे को ठीक कर रही हूं तो कहती है छोड़ दो छोड़ दो, जाओ अपने घर की रस्सी लाओ लाओ जल्दी। वो तो दासी थी बेचारी, आज्ञा पाते ही रस्सी ला ला करके देती थी, और वो डरती भी थी कि कृष्ण देख लेंगे कि रस्सी लेकर आ रही है तो हमारे घर कभी नहीं आएंगे। लेकिन रानी आज्ञा दे रही थी तो छीप करके कृष्ण देखने न पाए और रस्सी ला करके देती। और क्या करे, कृष्ण के सुधार के लिए बांधा जा रहा था, इसलिए गोपियां भी सहयोग कर रही। कोई कोई गोपी कहती थी, रानी जी आपके लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, देखिए रस्सी घट रही है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। मां ने कहा, नहीं नहीं, चाहे पूरे गांव की रस्सी लगानी पड़े और बांधते बांधते भले शाम हो जाएगी, लेकिन बांध करके ही रहूंगी। वास्तविक बात थी कि भगवान की शक्तियों में होड़ हो गया, तैयार हो गया कि भगवान को हम नहीं बांधने देंगे, नहीं बांधने देंगे। शक्तियां प्रकट हो रहे थे, लेकिन भगवान के हृदय में जब कृपा शक्ति प्रकट हुई, मां की दशा देखिए, वो पसीने से लथपथ हो गई थी, बाल बिखर गया था, थक गई थी, तो अपनी मां का परिश्रम देख करके भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और कृपा करके वो बंध गए। इस तरह से बंध गए, बंध गए। इसके बाद मां ने कुछ बच्चों से कहा, यहां खड़े रहो देखते रहो और मैं जाकर के घर का काम करती हूं। मां घर का काम करने लगी, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। बच्चे को बांध करके थोड़ा रखना, डर जाएगा, इसे नटखटपना नहीं करेगा, शैतानी नहीं करेगा, इसके लिए बांधी। तब तक ब्रज में हल्ला हो गया कि माँ ने कृष्ण को बांधा है, कृष्ण को बांधा है, कृष्ण को बांधा है। सब सखा लोग जुटने लगे, लोग आया करके कहने लगे, क्यों बांधा क्यों बांधा। माँ के पास कोई नहीं जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं, क्यों बांधा क्यों बांधा, कौन बांधा कौन बांधा। तो दूसरे लोग बताते थे कि वो उसकी मां ने बांधा है, तब सब शांत हो जाते थे, आते थे कृष्ण के पास। उस वक्त किसी ने जाकर के दाऊद से कहा, बलराम बलराम तुम्हारे छोटे भाई को बांधा गया है पशु की तरह। अब तो बलराम जी में ईश्वर का आवेश हो गया, भगवान है ही, कौन बांधा है कौन बांधा है, मैं पूरे ब्रज को जला करके राख कर दूंगा। बोलते आते थे, जानते हो मैं कौन हूं, मैं संकर्षण हूं, मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है, कौन बांधा है कौन बांधा है। आ रहे थे भगवत्ता के आवेश में, लेकिन यहां आने पर उनको पता चला कि मां ने बांधा है। तो मां ने बांधा है तो फिर भी मां के पास जाकर कहने लगे, तो पास नहीं बंधन लगा, तुमने बांधा है, तुमने कृष्ण को बांधा है, जानते हो कौन है, जानती हो कौन है कृष्ण, तुमने किसको बांधा है, तुम समझती हो कि ये तुम्हारा केवल पुत्र है, यही है नारायण, यह भगवान है, यही सारी सृष्टि किया है, तुमने इसकी इसको जो बंधन लगाया है, तुमने बहुत पाप किया है, इसकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, ये करते हैं, यही सब अवतार लिए हैं, यही बड़ा अवतार लिए, नृसिंह अवतार लिए, ये लिए ये लिए ये लिए, इस तरह से बलराम जी कह रहे थे, तुम खोलो नहीं तो मैं ब्रज में आग लगा दूंगा, पृथ्वी पलट दूंगा, खुलती हो कि नहीं खुलती हो कि नहीं, कृष्ण यह है वह। तो मां घर के काम को रोक करके पूछी, और तुम कौन हो
ये तो नारायण है, ये तो भगवान है, अल्लाचार रो रहा है, ये नारायण की दशा है, नारायण दूसरे के घर में चोरी करता है, नारायण बोलता है। और तुम कौन हो? भगवान जी कहते मैं संकर्षण हूं, मैं शेष नाग हूं, मैं ये हूं, वो कृष्ण जब जब अवतार लिए तो मैं भी आया, ये आया, वो आया, वो आया, कृष्ण यह अवतार है, मैं यह अवतार हूं, ये अवतार हूं। तो मां छड़ी दिखा करके कहती है देखो सारा अवतार मेरे ही घर में हो रहा है, दूसरे का घर नहीं अवतार लेने के लिए। अभी अगर ज्यादा बोले तो जैसे कृष्ण को बांधी है उसी तरह से बांधते हैं। तो भगवान जो कहते हैं खोल दूंगा, ऐसे कहते हैं मां से कहते हैं मैं खोल दूंगा, जैसे बच्चे कहते हैं मां कहते खोल दो सास है तो खोल दूंगा, खोल दूंगा। तो जरा चलो खोलने के लिए, तो श्री बलराम जी जब चलते हैं खोलने के लिए और मां छड़ी लेकर आती है तो ये चले दूर भाग, नहीं खोल रहे, नहीं खोल रहे। फिर जब मां घर के काम धंधे में लग जाते हैं तो फिर बलराम जी आए कृष्ण के पास, कहते हैं और बलराम जी की तरफ कृष्ण बिल्कुल दीन की तरह देख करके रोने लगे कि भैया अब इस विपत में तुम सहायता कर, अब तुम ही एकमात्र हो, अब हम क्या करें। लेकिन बलराम जी कहते हैं जो मैं क्या करूं, तुमको मैं कई बार कहा कि चोर मत करो, कई बार कहा, अब मैं क्या करूं, जो किए हो भोगो, अब हम क्या करें। अगर दूसरा कोई बांधा होता तो मैं उसको दिखा दिया होता, लेकिन मां बांधी है, मैं क्या करूं। तुमको कई बार कहा नहीं ये सब चोरी मत करो, बर्तन मत फोड़ो, लेकिन तुम मानते नहीं, अब हम क्या करें। तो बलराम जी भी उसमें उन्हीं के समान रोने लगे, साथ में खड़ा होकर, ये दोनों ईश्वर रो रहे थे दोनों भगवान रो रहे हैं। पद सुरदास जी ने पद लिखा है कि कृष्ण बलराम दोनों रो रहे हैं, तो ये उन दोनों की रोती हुई छवि सदा मेरे हृदय में अंकित रहे। सुर सागर में पद है ऐसा, यही छवि हमारे हृदय में अंकित। बलराम जी भी लाचार हो गए, खोल नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है दिनय पत्रिका में, दिन बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोयर छिन्न ब्रह्म जसुमति हटि बांधो सकत न छोरी। जिन प्रभु ने देवता नाग दैत मनु सबको कर्म की डोरी में बांध करके रखा है, उन्हीं को मां जसोदा ने ब्लाक बांध दिया और उनकी हिम्मत नहीं थी कि उसको तोड़ सके, बलराम जी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको खोल सके। वो नंद बाबा आकर के खोलेंगे, जो कोई नहीं खोल सका, और भगवान का साहस नहीं था कि वो खोल लेते, उनको तो डर था कि खोलूंगा तो इस पर पिटाई खूब होगी और दृढ़ बंधन लग जाएगा, इसलिए वो तो खोलने का नाम नहीं लेते थे। यह है प्रीति का बंधन, स्नेह का बंधन, इसीलिए उखल में बंधे हुए भगवान की दामोदर की बारंबार प्रार्थना की जाती है। सतगुरु जी मानते हैं कि जिस प्रकार आपने कुबेर के पुत्रों को भक्ति दिया बद्ध मूर्ति से, उसी तरह आपका ये बंधा हुआ स्वरूप मेरे हृदय में सदा उदित रहे, मुझे न मोक्ष चाहिए, न राज्य चाहिए, न कुछ भी चाहिए, हे बाल गोपाल आपकी अच्छा भी सदा मेरे हृदय में अंकित रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।